हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप मुझे अपनी बहू बना लीजिए प्लीज़, आन्या ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अन्वय ने अपना सिर पकड़ लिया। अनामिका जी ने उसे एक नज़र देखा, फिर आन्या को देखकर बोली, हम इस बारे में सोचेंगे, पहले आप जाकर फ्रेश हो जाइए, डिनर साथ में करेंगे। इतना कहकर उन्होंने बाहर देखकर आवाज़ लगाई, मोहिनी। उनके पुकारते ही दूध की तरह सफ़ेद रंग वाली सुंदर सी लड़की कक्ष के अंदर आ गई। मोहिनी, ये हमारी खास अतिथि हैं, इन्हें इनका कक्ष दिखाइए और जूली को कहिए कि इनके कक्ष के बाहर पहरा दे, इन्हें जो भी चाहिए हो उपलब्ध करवाए। उन्होंने अपना हुक्म सुना दिया। मोहिनी ने ईर्ष्या भरी निगाहों से आन्या को घूरा, जो उसे आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी, फिर हाथों से चलने का इशारा कर दिया। जाइए आन्या, चिंता मत कीजिए, यहाँ आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। उसको आगे ना बढ़ता देख अनामिका जी ने उसे आश्वासन दिया। आन्या मोहिनी के पीछे पीछे चल दी, पर गेट से कुछ दूरी पर जाकर उसके कदम ठहर गए। उसने पीछे मुड़कर उन्हें देखकर कहा, मैं आपको रानी साहिबा कहूँ, मल्लिका कहूँ, आंटी कहूँ या माँ कहूँ, आप क्या कहकर बुलाना चाहती हैं हमें? अनामिका जी ने उसके सवाल को सुनकर मुस्कुराकर उल्टे उसी से सवाल कर दिया। उनकी बात सुनकर आन्या ने सौम्य सी मुस्कान के साथ कहा, माँ कहूँ, अगर मेरी माँ कहीं होती तो वो भी आपकी ही जैसी होती। उसकी बात सुनकर अनामिका जी की मुस्कान फीकी पड़ गई। उन्होंने अजरत से उसे देखते हुए कहा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अभी तो आपने कहा था कि आपके मम्मी पापा दोनों हैं। हाँ, मेरे मम्मी पापा हैं, पर जन्म देने वाली माँ नहीं है। वो मुझे जन्म देते ही भगवान के पास चली गई थी, इसलिए पापा मुझे उनकी मौत का जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने कभी मुझे प्यार नहीं किया। माँ के जाने के 3 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और उसके बाद वो उनके इशारों पर ही चलते हैं। मैं उनकी बेटी नहीं, उनके सर का बोझ हूँ, जिसे वो कैसे भी उतार कर फेंक देना चाहते हैं। मम्मी सौतेली है तो उन्होंने पैसों के लालच में मेरी शादी निहाल से तय कर दी और पापा ने भी कुछ नहीं कहा। मुझे निहाल पसंद नहीं था, फिर भी उनकी वजह से मैंने उससे सगाई कर ली थी, लेकिन शादी नहीं कर पाई और घर से भाग गई, तभी इनसे मिली थी। मुझे लगा था वो बदल गए, पर नहीं, आज भी मिसेस कावेरी सिन्हा को बस पैसे चाहिए, जिसके लिए वो मुझे बेचना चाहती हैं और पापा उनका साथ दे रहे हैं, इसलिए मैं वापस नहीं जाना चाहती। आन्या की बात सुनकर अन्वय ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। वहीं अनामिका जी उसके पास आ गईं और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, आपको यहाँ से कोई जाने के लिए नहीं कहेगा, जाइए फ्रेश होकर आइए। आन्या ने अपने आंसुओं को साफ किया और मुस्कुराकर हामी भर दी और वहाँ से चली गई। अब वहाँ बस अनामिका जी और अन्वय ही थे। अनामिका जी अब भी उसकी कही बातों के बारे में सोच रही थीं। तभी उनके कानों में अन्वय की आवाज़ पड़ी, माँ, आपने उसे ऐसा क्यों कहा? वो इंसान है, वो यहाँ कैसे रह सकती है? यहाँ हर पल उसकी जान को खतरा होगा। अन्वय ने आन्या के वहाँ से जाते ही अपनी बात उनके साथ रख दी। अनामिका जी उसके तरफ मुड़ी और गहरी नज़रों से उसे देखते हुए बोली, अच्छा, अगर ऐसा है तो आप उन्हें यहाँ क्यों लेकर आए? उनका सवाल सुनकर अन्वय चुप रह गया, समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। अनामिका जी ने ही दोबारा कहा, आप अभी सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान दीजिए, इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अन्वय चुपचाप वहां से जाने लगा तो अनामिका जी ने पीछे से कहा, वैसे आपकी पसंद अच्छी है, बहुत हिम्मत वाली और साफ दिल की लड़की है वो, कुछ भी मन में छुपाकर नहीं रखती, हमें आपके लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। सही कहा आपने, बहुत हिम्मत वाली लड़की है, पर हमारा कोई मेल नहीं है, क्योंकि वो लड़की है एक इंसान और मैं एक वैम्पायर हूँ। हम भी भेड़िए के समुदाय की राजकुमारी थीं और आपके पिता वैम्पायरों के मुखिया, मेल तो हमारा भी नहीं था, पर मिलन हुआ हमारा, और इन दो अलग अलग समुदाय के जीवों के मिलन से आपका अस्तित्व है। उनकी बात सुनकर अन्वय बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया। अनामिका जी ने खुद से ही कहा, समझ सकते हैं हम कि आप क्यों आन्या को नहीं अपनाना चाहते, पर हम ये भी जानते हैं कि आन्या ही आपके लिए बनी है, आप दोनों का मिलन तो कुदरत ने तय किया है, हम या आप इसके खेल को न समझ सकते हैं और न ही बदलने की ताकत रखते हैं। अन्वय वापस अपने काम के लिए चला गया। वहीं आन्या उस रूम में पहुंची और आंखें बड़ी बड़ी करके सब देखने लगी। बहुत ही बड़ा और खूबसूरती से सजाया गया कक्ष था वो, आन्या के घर से भी बड़ा था वो कक्ष। मोहिनी उसको वहां छोड़कर चली गई। आन्या भी कमरे को देख रही थी, तभी जूली ने वहां कदम रखा, उसके साथ कुछ अन्य लड़कियां भी थीं। आन्या ने दरवाजे की आवाज सुनकर नजरें घुमाई। इतनी सारी लड़कियों को देखकर आन्या थोड़ा घबरा गई। तभी जूली ने सबको उनके हाथ में पकड़े क्लोथ रैक्स और बाकी की चीजों को रखने का इशारा किया। सभी आगे आईं और सर झुकाए हुए ही सब चीजों को सेट करके वहां से चली गईं। आन्या आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें देखती ही रह गई। सबके जाने के बाद जूली ने उसे देखकर सौम्यता से कहा, मिस आन्या, ये सब मल्लिका ने आपके लिए भेजा है और कहा है कि फ्रेश होकर नीचे आ जाइए। अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो मैं बाहर ही हूँ, आप मुझे बता सकती हैं। अब से हर पल मैं आपके कक्ष के बाहर मौजूद रहूंगी। आपको कुछ भी चाहिए हो, कहीं भी जाना हो तो मुझे बेझिझक कह सकती हैं। अब आप फ्रेश हो जाइए, मैं बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ। जूली ने सर झुकाकर उसे आज्ञा ली और कक्ष से बाहर चली गई। बेचारी आन्या के लिए ये सब बिल्कुल नया था। उसने नजरें घुमाकर देखा तो कुछ ही सेकंड में पूरा कबर्ड भर चुका था। पहनने को कपड़े, सैंडल्स और जरूरत की बाकी सभी चीजें वहां मौजूद थीं। आन्या ने जाकर कपड़ों को देखा, सभी एक से एक खूबसूरत लॉन्ग गाउन थे वहां। हमारी आन्या जो सिर्फ सूट सलवार पहनती थी, साथ में हर पल दुपट्टा गले में लटका रहता था, उसके लिए ये नया अनुभव था। पर वो ड्रेस लग बड़ी ही खूबसूरत थी। उसने तो अपनी शादी का जोड़ा पहना हुआ था, तो दुपट्टे को हटाकर बेड पर रख दिया। फिर एक ड्रेस लेकर बाथरूम में चली गई। आन्या तैयार होकर कक्ष से बाहर आई। उसने व्हाइट कलर का सुंदर सा गाउन पहना हुआ था और उसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। जूली ने उसे देखा तो उसके लबों पर मुस्कान खेल गई। आन्या भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दी, हालांकि ये सब उसको बहुत अजीब लग रहा था। बिना दुपट्टे के असहज महसूस करते हुए उसने अपनी हथेली से ड्रेस को ऊपर खींचना चाहा, क्योंकि वो वी नेक गाउन था जो थोड़ा डीप था। जूली ने उसे ऐसा करते देखा तो उसके हाथ को नीचे करते हुए बोली, रहने दीजिए, आप इसमें बहुत प्यारी लग रही हैं। सच, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हमारे कुनबे में भी एक से एक सुंदर लड़की है, पर आपकी बात ही अलग है। तभी शायद मास्टर अनवे ने आपको चुना है अपने लिए। उसकी बात सुनकर आन्या हल्का सा मुस्कुरा दी। जूली उसे लेकर आगे बढ़ गई। वो डाइनिंग एरिया में पहुंची जहां अनामिका जी पहले ही आन्या का इंतजार कर रही थी। उन्होंने आन्या को देखा जो बिल्कुल गुड़िया की तरह लग रही थी, तो मुस्कुराकर उसे अपने पास बुलाया। आन्या भी मुस्कुराकर उनकी तरफ बढ़ गई। आगे बढ़ते हुए उसकी नजर टेबल पर पड़ी जो नॉनवेज डिशेस से सजाई हुई थी। पूरा टेबल उन्हीं सबसे भरा हुआ था, वेज कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। मांस देखते ही आन्या का जी मचलने लगा। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से गाउन संभालते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। उसके अचानक ऐसा करने से जूली, अनामिका जी और वहां मौजूद बाकी सभी वैम्पायर जो इंसानी भेष में थे, वो सभी हैरान हो गए।